आरव ने आयु को ओबेरॉय मेंशन से भागने से तो रोक दिया था, लेकिन साथ ही आयु ने आरव को चैलेंज कर दिया था। आयु ने कहा कि अब वो खुद इस शादी से कहीं नहीं भागने वाली है, बल्कि खुद आरव उसे मंथन और उसकी शादी से भगा कर लेकर जाएगा। आरव की खुशी के लिए आयु ने फिलहाल के लिए शादी करने के लिए हाँ कह दिया था और वो अंदर चली गई थी। आयु अंदर गई तब सब लिविंग रूम में थे और वो उनकी नज़रों से छुपकर ऊपर अपने कमरे में जाकर तैयार हो चुकी थी। सिमरन आयु को लेकर सबके बीच पहुंची तो आरव भी वहां आ चुका था। रास्ते में सिमरन ने मंथन की फैमिली के आने की बात आयु को बता दी थी। आयु को वहां देखकर कविता जी का मुंह बन गया था, लेकिन आरव के आगे उनका कोई बस नहीं चल रहा था। किस्मत में जब तुम दोनों का साथ लिखा है तो हम बीच में क्यों तुम्हारा रिश्ता खराब करें, बस यही सोचकर हमने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। उम्मीद है कि तुम दोनों इस शादी से खुश रहोगे, कविता जी ने आयु से कहा। बाकी लोग भले ही इस सगाई से खुश हों या आरव कुछ भी जता रहा हो, पर साक्षी अच्छे से सच जानती थी। रिश्ता फिक्स होने से पहले साक्षी ने आयु की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, आयु तुम इस शादी से खुश तो हो ना? बिल्कुल दीदी, आयु ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर आरव की तरफ देखकर आगे कहा, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आयु के चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल देखकर आरव सकपक आ गया था। वो मन ही मन बोला, ये आयु के फेस पर इतनी अजीब सी स्माइल क्यों है और आज मुझे आयु में आरव खुराना क्यों नजर आ रहा है? आरव के सकपकाहट का कारण आयु को अच्छे से समझ आ रहा था। उसने मन में कहा, तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? लगना भी चाहिए आरव खुराना, तुम्हें भी तो पता चले जब कोई तुम्हारी तरह बिहेव करेगा और आसपास वालों को बेवजह हर्ट करेगा तब कैसा लगता है? अब तुम्हारी बारी है। वही आयु के हाँ कहते ही साक्षी को राहत महसूस हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, यहाँ आने से पहले हमने मंथन को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, जब उसे सगाई का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। बिल्कुल खुश होगा, और मैं तो आज रोके की तैयारी करके यहाँ आई हूँ। साक्षी तुम आयु को शगुन दो और बाकी की रस्में भी कर दो, कविता ने कहा। साक्षी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी थी। उसे अच्छे से पता था कि मंथन और आयु की सगाई की बात अचानक से हुई थी, फिर कविता इतनी तैयारी के साथ वहां कैसे आ सकती थी, वो लोग तो शहर में भी नहीं रहते थे। आपने ये इतनी सारी तैयारी कब की? साक्षी ने पूछा। अरे नहीं, हमने कोई तैयारी नहीं की है, हम तो बस आरव के कहने पर रिश्ता तय करने आए थे, बाकी ये सारा सामान और अरेंजमेंट आरव करके लेकर आया है, कविता ने बताया। उसकी बात सुनकर सिमरन और तारा एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी। तारा ने हिचकिचाती आवाज में कहा, लेकिन कविता जी, आरव का लाया हुआ सामान आप आयु को कैसे दे सकती हैं? ये सामान लड़की के ससुराल से आता है, आयु की शादी आरव से नहीं मंथन से हो रही है। इससे पहले कि आयु को इनकार करने का कोई मौका मिलता, आरव जल्दी से बोल पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, और वैसे भी मंथन और साक्षी मेरे लिए फैमिली की तरह हैं। सामान किसी की तरफ से भी आए, फर्क इस बात से पड़ता है कि शादी किससे हो रही है। मैं भी आरव की बात से अग्री करती हूँ साक्षी दी, आप रस्म कीजिए, आयु ने जवाब दिया। उसने आरव की तरफ देखा और मन ही मन बोली, खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है, बेवकूफ कहीं का। दूसरों की पत्नी के लिए कौन शगुन का सामान लेकर जाता है, खुद ही दोबारा शादी करने वाले काम कर रहा है। खैर छोड़ो, मेरे लिए अच्छा ही है जो ये सामान आरव लेकर आया है, शादी भी तो उसी से होनी है। आयु अपनी तरफ से पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि आरव उसकी शादी जरूर रोकेगा। आयु के हाँ कहते ही तारा ने साक्षी की तरफ रस्म करने का इशारा किया। साक्षी खड़ी हुई, आयु को शगुन की चुनरी ओढ़ाकर बाकी रस्में भी पूरी की। शादी और सगाई की डेट निकालने के लिए तारा ने पंडित जी को भी बुलाया था। रोके की रस्म पूरी होते ही पंडित जी वहां पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने आयु और मंथन की कुंडली पढ़नी शुरू की। पंडित जी कुंडली पढ़ रहे थे तब आरव बोला, अब पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए, और हाँ, हमें बस और इंतजार नहीं करना है, आप कोई जल्दी का मुहूर्त बताइएगा। आयु आरव की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी, उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। उन सबके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि किसी और से ज्यादा आरव को उन दोनों की शादी की जल्दी थी, उसका बस चलता तो वो खुद पंडित बनकर आज ही उनकी शादी करवा देता। पंडित जी को मुहूर्त वगैरह निकालने में टाइम लगने वाला था, ये सोचकर तारा और सिमरन साक्षी और कविता को लेकर घर दिखाने के लिए चली गई थी, जबकि अरुण जी, आरव और जय जी वहीं पर बैठे हुए थे। तारा ने आयु को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन आयु वहीं पर रुक गई थी। क्या हुआ पंडित जी, आपको कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा? इतनी देर में तो मैं एक पूरी फाइल खत्म कर देता हूँ, आरव ने पंडित जी के टाइम लगने पर कहा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और जय जी की तरफ देखकर कहा, इन दोनों की कुंडली मिल नहीं रही है, तो आप इस शादी को टालकर अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढिए। पंडित जी आप कुंडली को छोड़िए, इन दोनों के दिल मिले हुए हैं, पिछले कई सालों से दोनों साथ रह रहे हैं, आरव बोला। पंडित जी ने आरव को समझाते हुए कहा, जिंदगी में बहुत से लोग हमारे साथ चलते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन साथ होने और हमसफर होने में फर्क होता है, इन दोनों की राहें एक नहीं है, हम लोग इन सब में नहीं मानते हैं, आपस मुहूर्त निकालिए, आरव ने जवाब दिया। और आप कौन हैं,
मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है, आरव के बार बार दखल देने पर पंडित जी ने पूछा। जय जी ने जवाब देते हुए कहा, ये आरव है, मंथन का दोस्त, और आयु की शादी पहले इसी के साथ हुई थी। अजीब बात है, आप अपनी पत्नी की शादी करवाने में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। जय जी, आपकी बेटी के कुंडल में दो शादी का योग ही नहीं है। हाँ, इसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किल है, पर जीवन साथी एक ही है। क्या मैं आपकी कुंडली देख सकता हूँ? पंडित जी ने आरव की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, हम दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं और इसमें हम दोनों की मर्जी रही है। सही कहा आपने, हमारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी, अब अलग हो गए हैं तो दोनों ही खुश हैं। आपकी थ्योरी गलत साबित हुई, अब बस आप मुहूर्त बताइए, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। पंडित जी ने जय जी की तरफ देखा, जिन्होंने हां में सिर हिला गया था। उसके बाद पंडित जी ने भी बहस करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा, इस महीने बाद का शुभ मुहूर्त है। जय जी ने तुरंत उनकी बात पर हामी भर दी थी। एक महीना काफी था आयु और मंथन की शादी की तैयारी करने के लिए, तो वहीं आयु ने सोचा कि वो इस एक महीने में आरव को समझा ही देगी। डेट फिक्स होने के बाद पंडित जी वहां से चले गए थे। वहीं उनके जाते ही जय जी ने आरव की तरफ घूर कर देखा और कहा, ये क्या लगा रखा है तुमने? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर के मामलों में दखल दोगे। आयु मेरी बेटी है और तुम इस तरह बीच में दखल दे रहे हो जैसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो रहा हो। बेटी तो नहीं लेकिन बीवी तो थी ना, आरव ने कंधे उचका कर कहा। पहले थी अब नहीं है तो इसका पीछा छोड़ो, ज्यादा ही दूसरों की शादी करवाने का शौक चढ़ा है तो मैट्रिमनी ब्यूरो खोल लो, जय जी ने तंज भरे लहजे में कहा। पर उनकी बातों से आरव को कोई असर नहीं हुआ। इसकी विदाई के बाद ही मैं चैन से सांस लूंगा, पर चाहे आप मुझे कुछ भी कहिए, आरव ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। जय जी उसकी हरकतों से बुरी तरह झुंझला गए थे। उन्होंने आयु की तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ तुमने इसे छोड़ दिया।
मैंने नहीं छोड़ा, इसने मुझे डिवोर्स दिया है। बाकी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बहुत इरिटेटिंग है, आयु ने जवाब दिया और फिर आरव को एक नज़र घूर कर ऊपर चली गई थी। शादी की डेट फाइनल हो जाने के बाद उन्होंने बाकी रस्मों और दूसरी चीज़ों के बारे में आपस में चर्चा की और फिर मंथन की फैमिली वहां से जाने के लिए निकल गई थी। आरव अभी तक वहीं पर था और उसकी नज़रें आयु को ढूंढ रही थीं, जो न जाने कहां गायब हो गई थीं। आरव को जब आयु कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने वहां से जाना ही सही समझा। जब वो जा रहा था तो रुद्र से टकरा गया था। आरव के चेहरे पर बेचैनी भरे भाव देखकर रुद्र बोला, मुझे लगा तुम सब सही करने के लिए उससे अकेले में बात करना चाहते हो। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच? साफ दिख रहा है कि तुम खुश होने का दिखावा कर रहे हो। तुम उससे प्यार करते हो तो फिर उसको खुद से दूर क्यों करना चाहते हो? क्या फ़र्क पड़ता है जो मैं उससे प्यार करता हूँ, वो तो नहीं करती ना? ऐसा समझ लो कि तुम्हारी बहन की खुशी के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, आरव ने भारी आवाज़ में कहा। वो भी खुश नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती मॉम को बुलाकर उसे यहाँ लुधियाना भेज दिया। तुम जानते भी हो, वहाँ से आने के बाद उसने ठीक से किसी से बात नहीं की, ना कुछ खाया पिया है और ठीक से कुछ पता भी नहीं रही। अभी भी टाइम है आरव, संभल जाओ, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, रुद्र ने आरव को समझाया। नहीं, अब सब सही करने का टाइम निकल चुका है। बहुत मुश्किल से मुझे समझ आया है कि मैं ज़बरदस्ती उसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। उसकी किस्मत मंथन के साथ जुड़ी हुई है और मुझे थर्ड व्हील नहीं बनना है। मैं बस जाने से पहले उससे बात करना चाहता था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और मैं डायरेक्ट उसके रूम में नहीं जा सकता हूँ। उसे बस बोल देना कि जो वो चाहती थी वो उसे मिल गया है, तो इस बार अपने रिश्ते को संभाल कर रखे, आरव ने खुद को सख्त करके कहा और फिर वहां से चला गया था। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। इस बार उसने आरव को रोका नहीं, पर एक बात उसे समझ आ गई थी कि कुछ तो ऐसा हुआ था जो आरव बता नहीं रहा था। आरव ने जब खुद ही आयु की शादी करवाने का फैसला कर लिया था तो बाकी लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इस दौरान साक्षी चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी, अभी तो उसे मंथन को आयु और उसकी शादी के बारे में बताना था। क्या अनु के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद मंथन आयु से शादी करने के लिए हाँ कह देगा? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। इस बार मैंने जल्दी चैप्टर दिया है, अगले पार्ट पर मिलते हैं।